ओम शांति। आज का हमारा श्लोक है पहले अध्याय का 10 नंबर श्लोक, अध्याय फर्स्ट श्लोक नंबर 10। अपर्याप्तम तदस्माकम् बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम् तु इद एतेषाम् तु इदम् एतेषाम् बलम भीमाभिरक्षितम्। अपर्याप्तम् तत् अस्माकम् बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम् तु इद एतेषाम् बलम भीमाभिरक्षितम्। और इसका संधि विच्छेद है अपर्याप्तम तत् अस्माकम् बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम् तु इदम् एतेषाम् बलम भीमाभिरक्षितम्। एक बार इसका उच्चारण सुनते हैं।
अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं इदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्।
समाज व सरकार ने महासम्माननीय निवृत्ति मार्गी भीष्म से रक्षित, वह हमारी सेना अपार है, जबकि भेड़िये जैसे खदूस राक्षसी वृत्ति के लंबे चौड़े भीम द्वारा रक्षित इन पांचों पांडु पुत्र पांडवों की अल्पसंख्यक सेना सीमित है, अतः हमारी जीत निश्चित है। समाज व सरकार ने महासम्माननीय निवृत्ति मार्गी भीष्म से रक्षित, वह हमारी सेना अपार है, जबकि भेड़िये जैसे खदूस राक्षसी वृत्ति के लंबे चौड़े भीम द्वारा रक्षित इन पांचों पांडु पुत्र पांडवों की अल्पसंख्यक सेना सीमित है, अतः हमारी जीत निश्चित है।
इसका अर्थ एक बार पढ़ते हैं। भीष्माभिरक्षितम् तत् अस्माकम् बलम्। भीष्म से रक्षित वह हमारी सेना। आगे है अपर्याप्तम् तु इदम् भीमाभिरक्षितम्। अपार है और यह भीम द्वारा रक्षित। आगे एतेषां बलम पर्याप्तम्, इन इनकी सेना सीमित है। अब इसका अर्थ एक बार देखते हैं। भीष्म से रक्षित वह हमारी सेना अपार है। ये वाक्य जैसे ऊपर भी देखा कि दुर्योधन आचार्य द्रोणाचार्य को सारा वर्णन बता रहे अपनी सेना के योद्धाओं का, पांडवों की सेना भी। उस हिसाब से यह श्लोक बताया कि भीष्म से रक्षित वह हमारी सेना अपार है और यह भीम द्वारा रक्षित इनकी सेना सीमित है। अभी इसका क्लैरिफिकेशन लिखा है। समाज व सरकार में महासम्माननीय निवृत्ति मार्गीय भीष्म जो है उनके लिए महाभारत में दिखाया कि कौरव सेना के जब युद्ध शुरुआत हुआ, महाभारत युद्ध, उस समय भीष्म को कौरव सेना के पहले सेनापति बनाया था। और ऊपर हमने जो शब्दार्थ है उसमें भीष्म के बारे में पढ़ा है, भीष्म पितामह के बारे में। एक बार उसे फिर से दोहराते हैं, भीष्म पितामह के लिए बताया है कि वो सन्यासी थे, और यहाँ जो लिखा हुआ है भीष्म पितामह का क्लैरिफिकेशन, समाज व सरकार में महासम्माननीय निवृत्ति मार्गीय। निवृत्ति मार्गीय माना सन्यासियों के हिसाब से शब्द यूज किया है, और समाज व सरकार में महासम्माननीय, तो भीष्म पितामह जैसे जो सन्यासी है आज उनकी समाज और सरकार में मान्यता है। क्यों मान्यता है? क्योंकि सन्यासियों के पीछे बहुत सारी जनता रहती है, अगर इन सन्यासियों को प्रभावित करके रखे, या तो सन्यासियों को जो अधिकारी है वो अपनी तरफ करके रखेंगे, तो उनके पीछे जो भी प्रजा प्रभावित है अपने आप ही उन अधिकारियों की तरफ ही झुकेगी। इसी हिसाब से सन्यासियों को हमें मान दिया जाता है अधिकारी वर्ग। है उसे एक बार पढ़ते हैं। भीष्म अर्थात भयंकर, जो सबकी भांति भयंकर विषैले शास्त्रीय ज्ञान उगलते हो, पितामह अर्थात कलयुग अंत के उन भयंकर बाबाओं या साधुओं को भीष्म पितामह कहेंगे, जो परमात्मा सर्वव्यापी का उल्टा ज्ञान सुनाकर खास भारत और आम सारे विश्व के लोगों की बुद्धि को भटका देते हैं। आगे लिखा है, हद बेहद के कांग्रेसी कौरव नेताओं और पूंजीवादी धृतराष्ट्र द्वारा पर बाबा की तरह उनका बहुत सम्मान किया जाता है, प्रजा से वोट और फिर नोट भी लेना है ना। तो यहाँ जो लिखा है कि कलयुग अंत के उन भयंकर बाबाओं या साधुओं को भीष्म पितामह कहेंगे, जो परमात्मा सर्वव्यापी का, ज्यादातर जो भी सन्यासी है वो तो शिवहोम बन के बैठे हैं, और यही बताया जाता है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, और उसी आधार से सन्यास धर्म के लिए जो बताया जाता है कल्प वृक्ष के चित्र में कि ये जो सन्यासी है वो सात्विक अवस्था में भारत में होते हैं, और तमोगुण अवस्था में विश्व में अर्थात विदेशों में भी उनका मर्तबा है, और जब इस तरह से वो प्रभावित कर अपने आप ही जो प्रजा उनके पीछे जाएगी और प्रभावित करेंगे, अर्थात सन्यासियों को अपने तरफ मोड़ेंगे, जो लिखा है प्रजा से वोट और सिर्फ नोट लेना है ना, तो प्रजा सन्यासियों को अगर अधिकारी वर्ग अपनी तरफ करते हैं तो प्रजा मुड़ेगी। इसी हिसाब से उनकी जो सेना है वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी, अर्थात भीष्म से हमारी सेना अपार है तो कौरव सेना बढ़ जाती है, और यह डेढ़ जैसे खदुस खदुस वाला लंबे चौड़े भीम द्वारा रक्षित। तो भीम के लिए महाभारत में दिखाया है कि वो बहुत बड़े बड़े राक्षसों को जैसे अकासुर बकासुर को मारा, इस तरह जो दिखाया जाता है कीचक का वध किया, तो राक्षसी वृत्ति के लंबे चौड़े, तो जो जैसे होता है उनके साथ वैसा ही रूप धारण करना है, इसीलिए भीम भी वैसे अंतर पार बजते है। ऐसे भीम द्वारा रक्षित इन पांचों पांडव पुत्र पांडव सेना सीमित है, अतः हमारी जीत निश्चित है। तो दुर्योधन की बुद्धि में ये है कि उनकी सेना अपार है, कौरवों की सेना ज्यादा दिखाई है, पांडवों की तुलना में कई गुनी ज्यादा थी, और उस तुलना में पांडवों की सेना संख्यक है अर्थात कम है, सीमित है, इसलिए कौरव सेना में दुर्योधन के बुद्धि में ये है कि उनकी जीत अर्थात कौरवों की जीत निश्चित है। तो यहाँ भी बाबा ने तो मुरलियों में ये बोला है कि क्वालिटी देखनी चाहिए या क्वांटिटी देखनी चाहिए, वास्तव में तो संख्या है लेकिन उनमें क्वालिटी वाले नहीं है, तो उसका फायदा क्या है? जिसके लिए बाबा ने एक हिसीडी में बताया है बीसीडी नंबर 2232 बीसीडी नंबर 2232 जिसमें बाबा ने बोला है कि पांडे को फॉलो करने वाले को पांडव कहते हैं, एक मात्रा बढ़ जाती है, पांडव उंगलियों पर गिनने योग्य है, महाभारत युद्ध में उनकी संख्या 5 से 7 अक्षोणी हो जाती है। ऐसे ही तुम बच्चों की संख्या भी बढ़कर बहुत होगी, तो संख्या को देखना अच्छा है या क्वालिटी को देखना अच्छा है? पांडवों की संख्या कम है लेकिन फिर भी पर भी अगर सारे ही ज्ञानी तो आत्माएं होंगे, अच्छे योद्धाएं होंगे, तो उसी आधार से पांडवों की सेना में जो एक मत था, एकजुट पना था उन भाइयों में, तो उसी आधार से पांडवों ने कौरवों पर जीत पाई है। इसीलिए बाबा संख्या को नहीं देखते हैं, बल्कि उनके अंदर पांडवों के अंदर जो विशेषता थी उसे देखा है। इसी तरह से बीसीडी 561 बीसीडी नंबर 561 इसमें बाबा ने बोला है कि संख्या अगर ज्यादा है लेकिन वास्तव में खून को शुद्ध रखना जरूरी है या संख्या बढ़ाना जरूरी है? शेर एक ही सारे जंगल को कंट्रोल कर लेता है। हिस्ट्री में भी ऐसे बहुत मिसाल मौजूद है। शिवाजी की सेना थोड़ी थी तो भी औरंगजेब की बड़ी सेना को हरा दिया। तो इसीलिए ही बाबा ने मुरली में भी बोला है कि बीरबल से लड़ाई बलवान की। तो यहाँ भी पांडवों की सेना कम है लेकिन फिर भी जीत तो पांडवों की हो जाती है। इस हिसाब से इस श्लोक का अर्थ यहाँ जो बताया है कि समाज व सरकार में महासम्माननीय निवृत्ति मार्गीय भीष्म से रक्षित वह हमारी सेना अपार है, और यह भेड़िए जैसे खदुस राक्षसी वृत्ति के लंबे चौड़े भीम द्वारा रक्षित इन पांचों पांडु पुत्रों पांडवों की अल्पसंख्यक सेना सीमित है। तो ये दुर्योधन के बुद्धि में तो गलतफहमी है कि अतः हमारी जीत निश्चित है। आज का एक श्लोक हो गया, पहले अध्याय का 10 नंबर श्लोक।